वसुंधरा पूरी तरह से बैंक्रप्ट हो चुकी थी। उसके पास ना तो जिंदगी जीने के लिए कोई सहारा था, उसका पति अमरीश भी कब का इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। अब उसे बस किसी न किसी तरीके से अरमान की जिंदगी में जगह बनानी थी, क्योंकि अरमान के जितना पावरफुल और बिलियनर कोई और नहीं था। फिलहाल अरमान, नानी माँ, अभिमान या दादाजी कोई भी नहीं चाहता था कि वसुंधरा या उसका बेटा वीर अरमान के आसपास भी भटके। वो सब अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रहे थे। जिस औरत ने कभी अपने बच्चे की बेरहमी पिटाई की थी, अपने पति को लगभग मार ही दिया था, जिसने उनके परिवार को बर्बाद कर दिया था, वो औरत आज फिर एक बार उनके परिवार को तोड़ने की कोशिश करने आई है और वो माफ़ी की मांग कर उनके घर में रहने की विनती कर रही थी। लेकिन एक सच ये भी था जिसे कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता था, वसुंधरा और उसके बेटे ने अपनी जान जोखिम में डालकर अंश सिंघानिया की जान बचाई थी और इस एहसान को अनदेखा करना नामुमकिन था। अरमान ने उन दोनों की ओर गहरी नज़रों से देखा। उसकी आंखों में सख्ती थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक एहसान का बोझ भी उसके दिल में था। फिर उसने मुंह बनाते हुए उनकी तरफ तीखी नज़रों से देखा और तेज आवाज में ऑर्डर देते हुए बोला, जब तक इन दोनों की चोटें ठीक नहीं हो जाती तब तक ये मेंशन में ही रहेंगे, जाकर गेस्ट रूम तैयार करवाओ। ये सुनते ही सब पल भर के लिए हैरान रह गए। किसी ने भी नहीं सोचा था कि अरमान ऐसा फैसला लेगा। हर किसी के दिल में वसुंधरा के लिए नफरत भरी पड़ी थी। वो औरत दो चेहरों वाली चालबाज औरत थी और अब उसी औरत के लिए मेंशन के दरवाजे खोल दिए गए थे। लेकिन वसुंधरा ने चाल खेली थी। वो जानती थी कि अगर एक माँ अपने बच्चे के लिए जान की बाजी लगा दे तो दुनिया भी झुक जाती है। इस बार उसने सीधे अरमान सूर्यवंशी के दिल को छुआ था। अरमान एक ऐसा इंसान था जो किसी का एहसान नहीं भूलता था, फिर चाहे वो एहसान करने वाला उसका दुश्मन ही क्यों ना हो, वो किसी पर कोई कर्ज नहीं छोड़ता था। उसी वक्त अविनाश, जो आस्था का भाई था, वो तेजी से आगे आया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी, आंखों में बर और गुस्सा भी था। उसने अरमान से कहा, एक बार फिर सोच लो अरमान, मुझे नहीं लगता कि इस औरत का यहाँ रहना ठीक होगा। अविनाश को आस्था की जिंदगी का हर पहलू पता था, कौन उसका दुश्मन रहा, किसने उसे धोखा दिया। उसने आस्था के बारे सब कुछ पता कर लिया था और यही वजह थी कि वो अपनी बहन के आसपास अब किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं चाहता था। अरमान ने उसकी बात सुनी लेकिन उसे कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ एक हल्की सी नज़र डाली और उसे एक रहस्यमयी मुस्कान दी और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। उधर आकाश ने सबको एक ग्रुप मैसेज कर दिया, एक घंटे में फार्म हाउस पर मिलना है। क्यों, किस लिए, किसी को कुछ नहीं पता था। बस इतना जरूर था कि हाल ही में अरमान सिंघानिया की दहशत कम हुई थी और अरमान सिंघानिया अब डेविल किंग के रूप में कम, एक बदलते हुए इंसान के रूप में ज्यादा देखा जाने लगा था। लेकिन अंश के अपहरण ने जैसे उस भूले हुए राक्षस को फिर से जगा दिया था। अब जो तूफान आने वाला था उसका अंदाजा किसी को नहीं था। इधर अविनाश अपने कमरे में चला गया। अब तक लगभग सबकी शादी हो चुकी थी। नानी माँ ने एंजल और अविनाश की शादी भी अपने हाथों से करवाई थी और वीडियो कॉल पर आस्था के दादाजी ने दूर बैठे उन्हें आशीर्वाद भी दे दिया था। घर में चारों ओर सिर्फ खुशियों की लहर दौड़ रही थी, लेकिन इस सब के बीच अंश की किडनैपिंग ने हर किसी के चेहरे पर एक दर्द की छाया डाल दी थी, जैसे किसी ने इस जश्न में जहर खोल दिया हो। इस वक्त आस्था के साथ रौनक, रश्मि, वंशिका और राधिका मौजूद थीं, लेकिन उसका मन कहीं और था। उसका दिल अंश में बंधा हुआ था। अंश उसकी गोद में था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे अगर एक पल के लिए भी उसने उसे सीने से अलग किया तो कोई आकर उसे उससे छीन ले जाएगा। बार बार उसके मन यही सवाल उमड़ रहे थे, मैंने अंश को अकेला क्यों छोड़ा, उस वक्त मैं उसके साथ क्यों नहीं थी। उस समय नानी माँ ने कहा था कि वो अंश को अपने पास सुला लेगी, तू अरमान के साथ कुछ वक्त बिता ले। वो वक्त, वो पल जिसे आस्था ने अपनाया, वही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गया। अब डर उसकी सांसों में था, डर कि कहीं फिर से कोई अंश को छीन ना ले। वहीं अरमान जैसे ही अपने रूम में आया, उसने देखा कि सारी लड़कियां वहां मौजूद थीं। अरमान को देखकर सब एक तरफ खड़ी हो गई थीं, फिर एक एक करके वहां से खिसकने लगी थीं, क्योंकि इस वक्त उन्हें भी यही लग रहा था कि अगर आस्था को कोई संभाल सकता है तो सिर्फ अरमान ही है जो अपने प्यार से आस्था को संभाल सकता है। इसीलिए अब आस्था के कंधे पर बारी बारी सांत्वना भरा हाथ रखकर वे लोग वहां से अपने अपने रूम में चले गए। वहीं अरमान ने एक नज़र आस्था को देखा और फिर आस्था की गोद में लेटे हुए अपने बेहद खूबसूरत से बच्चे को, जो अपनी डबडबाई हुई आंखों से अपनी माँ की बदहवास हालत को टुकुर टुकुर देख रहा था, मानो वो उससे कहना चाह रहा हो, अरे मम्मा बस करो ना, मेरा नाम अंश सिंघानिया है और मेरे डैड डेविल किंग है, तो मैं भी डबल डेविल किंग बनूंगा, तो आप क्यों मुझे लेकर इतना परेशान होती हो? अंश को देखकर कहीं ना कहीं लग रहा था कि इस वक्त वो अपनी माँ की गोद में लेटा हुआ यही बातें बोल रहा होगा। वहीं अरमान ने एक नजर अपनी बीवी को देखा और अगले ही पल जैसे ही अंश को गोद में लेने के लिए हाथ बढ़ाया, आस्था ने तुरंत ही उसका हाथ बीच में रोक दिया। उसने होंठ से कोड़े और नाराज नजरों से उसे देखकर बोली, ये क्या हुआ था हमारे बच्चे के साथ? सिंघानिया मेंशन की इतनी ज्यादा सिक्योरिटी के बावजूद कोई उसे अगवा करके ले गया, और आप इतनी आसानी से शांत कैसे रह सकते हैं? हाँ, किसने किया होगा? अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो? हम तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाते, ऐसे कैसे हो सकता है ये? नानी माँ और दादाजी तो हाल में ही थे, तो फिर हाल में से इतनी आसानी से कोई उसे कैसे लेकर जा सकता है? कहीं ना कहीं ऐसे कितने ही सारे सवाल थे जो वो लगातार अरमान से पूछ रही थी। कितनी सारी सीसीटीवी कैमरे, इतनी सिक्योरिटी, बावजूद और इतने सारे पावरफुल लोगों की मौजूदगी में उसका बेटा कैसे किडनैपिंग हो गया, और वसुंधरा और वीर के हाथों ही वो कैसे मिला? इस वक्त आस्था के दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो करे क्या नहीं। तभी अरमान ने बड़े ही कोमलता से लेकिन स्नेह भरे अंदाज में आस्था के सिर पर प्यार से हाथ रखा और अचानक आगे बढ़कर उसके होंठों को चूमते हुए बोला, शांत हो जाओ मेरी आफत, शांत हो जाओ। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि इस वक्त तुम बहुत परेशान हो, और तुम्हें क्या लगता है जिसने मेरे बेटे पर हाथ डाला है क्या मैं उसे यूं ही छोड़ दूंगा? और ये वसुंधरा और वीर की क्या कहानी है इसका भी मैं बहुत जल्द पता लगा लूंगा। फिलहाल अंश को मुझे दो और तुम थोड़ा सा आराम करो। अपना चेहरा देखो किस तरह मुरझा गया है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा पति तुम्हारे सामने बैठा हुआ है। अगले ही पल आस्था ने एक गहरी सांस ली और नम आंखों से बोली, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा डर गई हूँ। मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो? आपने देखा, जिस वक्त मैंने उस औरत की गोद में अपने बेटे को देखा, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों में जान ही ना बची हो। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। आप नहीं जानते इस वक्त मुझे कैसा लग रहा है। ये देखिए मेरा दिल कितनी जोरों से धड़क रहा है। ये कहकर आस्था ने अरमान का हाथ उठाया और अपने सीने पर रख दिया। अरमान आस्था के और करीब आया और अब वो कुछ अलग मूड में आ गया था, लेकिन आस्था ने तुरंत ही उसका मूड भांप लिया और उसने होंठ भींचे और आंखें से कोड़कर बोली, अब आप क्या उल्टी सीधी बातें सोच रहे हैं? मैं यहाँ आपसे इतनी सीरियस बातें कर रही हूँ और आप हैं कि कुछ उल्टा सीधा सोच रहे हैं, आस्था ने कहा।
अरमान ने बड़े ही प्यार से आस्था को देखा और उसके होठों को प्यार से छूते हुए कहा, क्या बात है, डेविल किंग की जान को इस तरह से हल्का नहीं होना चाहिए और परेशान तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तब आस्था ने झुंझलाहट से अरमान का हाथ हटा दिया और अंश को अपने साइड में लिटाकर अरमान को उंगली दिखाते हुए बोली, ये आप कैसे फालतू की बातें कर रहे हैं? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है इस वक्त मेरी जान हलक में अटक गई थी? आपको पता भी है मेरा बेटा किडनैप हुआ था। किडनैप का मतलब समझते भी हैं आप? इस वक्त आप सोच भी नहीं सकते कि मेरी क्या हालत हुई पड़ी है। आस्था की आंखें इस वक्त आग उगल रही थीं। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था और सबसे ज्यादा ताज्जुब तो इस बात का हो रहा था कि इतनी सारी सिक्योरिटी और इतने पावरफुल लोगों के रहते हुए उसका बेटा उसी के घर में से अगवा हो गया। ये बात तो रह रहकर उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द कर रही थी। वहीं अरमान तो अभी भी अपने उस हाथ को देख रहा था जो कि आस्था ने अभी अपने होठों पर से हटाया था। वहीं आस्था जो कि लगातार अंश को लेकर अरमान को बातें सुनाई जा रही थी, अब जब उसने देखा कि अरमान उसकी बातों का कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है और ना ही उसे कोई जवाब दे रहा है, तो थोड़ी सी चौंक गई और वो अरमान को देखने लगी थी। और जैसे ही उसकी नज़र अरमान पर पड़ी, अरमान लाल आंखों से अपने उस हाथ को देख रहा था जो हाथ आस्था ने अभी उसके होठों पर से हटाया था। अब तो आस्था की जुबान एकदम से ही बंद हो गई थी और वो टुकुर टुकुर अरमान को और साथ ही उस हाथ को देखने लगी थी। और जल्दी ही लास्ट टाइम जब जब उसने अरमान पर से खुद से अपना हाथ हटाया था, अरमान कितना ज़्यादा वाइल्ड हो जाया करता था, वो सारी बातें उसके दिमाग में घूमने लगी थीं और एक अनचाहा सा डरों से सताने लगा था कि कहीं अरमान फिर से कोई हरकत न कर ले, अपने आप को चोट न पहुंचा दे या फिर किसी सामान की तोड़फोड़ न कर दे। यहाँ तो आस्था ने गुस्से से उसका हाथ हटाया था क्योंकि वो अपने बेटे को लेकर इस वक्त परेशान थी। उसकी इंटेंशन ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी कि वो अरमान को खुद से दूर कर रही है। लेकिन आस्था इन सब बातों में ये बात बिल्कुल भी नहीं भूल सकती थी कि उसका पति एक नंबर का सनकी और ऑब्सेस्ड इंसान है जो अपने सनकपन में और अपने जुनून में कुछ भी कर सकता है। हालांकि आस्था ने अपने प्यार से उसे बदलने की, उसे सुधारने की बहुत कोशिश की थी और जिसमें काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हो गई थी, लेकिन आज जिस तरह से अरमान अजीब से रिएक्शन दे रहा था और अजीब सी नज़रों से आस्था को देख रहा था और एक बार फिर अपने हाथ को देख रहा था, तब तो आस्था थोड़ा सा घबरा गई और उसे लगा कि कहीं अरमान गुस्से में कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। इसलिए आस्था तुरंत दौड़कर उसके करीब गई, उसका हाथ पकड़कर वापस से उसने उसे अपने होठों पर रख दिया। अब ये देखकर अरमान की आंखें जो थोड़ी देर पहले आग उगल रही थीं तुरंत ही शांत हो गई थीं
उसने अपनी आंखें बंद की, कुछ सेकंड तक एक गहरी सांस ली और फिर 2 से 3 बार आस्था के गालों को थपथपाकर बोला था, डर गई थी क्या? हुआ, तुम डर गई थी। आस्था अब जैसे ही अरमान ने बड़े ही नॉर्मल तरीके से ये कहा, आस्था को अचानक ही अपने शरीर का रोंगटा खड़ा हुआ सा दिखाई देने लगा था। उसे ऐसे लगने लगा था मानो कि उसके शरीर में कुछ अलग ही तरह का सिहरन सी उठ गई हो। कहां तो वो अंश की किडनैपिंग को लेकर अरमान से झगड़ा कर रही थी और कहां अरमान ने उसे एक पल में ही इतनी बुरी तरह से डरा दिया था, क्योंकि आस्था अरमान का ऑब्सेशन अब एक बार फिर नहीं झेल सकती थी। वो फिर से अपने नॉर्मल पति को अब नॉर्मल नहीं बनने देना चाहती थी। लेकिन आज एक ही पल में उसे ऐसा लगा जैसे एक बार फिर पुराना अरमान सिंघानिया उसके सामने खड़ा हुआ है। तब आस्था ने कांपते हुए अरमान की ओर देखकर कहा था, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे थे? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या आपको नहीं पता इस वक्त मैं कितना ज्यादा परेशान थी? तो आपको मुझे इस तरह से डराने की क्या जरूरत थी? अब आस्था ने एक बार फिर जैसे चटर-पटर करने की कोशिश की। अरमान ने तुरंत आगे बढ़कर आस्था के होठों को अपनी कैद में ले लिया था और आस्था को एक डीप किस करने के बाद उसके सर पर बड़े ही प्यार से सहलाते हुए बोला था, शांत हो जाओ वाइफी, शांत हो जाओ, और तुम्हें मुझसे डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अब पहले वाला डेविल किंग नहीं हूं, लेकिन हाँ, मैं पहले से भी ज्यादा खतरनाक जरूर हूं, अरमान ने थोड़ा सा डार्क लहजे में ये कहा था। आस्था के दिल की हालत इस वक्त काफी ज्यादा अजीब सी हो रही थी। फिलहाल आस्था ने अरमान का हाथ थाम कर कहा था, मुझे नहीं पता आप डेविल किंग हो या नॉर्मल अरमान सिंघानिया हो या आप जो कोई भी हो, लेकिन मेरे बेटे के साथ ऐसी हरकत फिर कभी नहीं होनी चाहिए। आप नहीं जानते कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तब अरमान ने केवल एक नॉर्मल लुक आस्था को दिया। अगले ही पल अरमान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए सीरियस आवाज में कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं अपने बेटे को इतनी आसानी से किसी को कुछ करने दूंगा? ये अंश सिंघानिया जान है मेरी, और मैं अपने बेटे पर बुरी नजर डालने वालों की नस्लें तक मिटा दूंगा। ये कहते हुए अरमान की आंखें लगभग आग उगलने लगी थीं। डियर रीडर्स, आप सभी के जबरदस्त प्यार और लगातार मिल रही डिमांड को देखकर मैंने एक बड़ा फैसला लिया है। हमारी इस कहानी को अब और आगे बढ़ाया जाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह आपने अब तक इस कहानी को अपना भरपूर प्यार और सपोर्ट दिया है, उसी तरह आगे भी आप मेरी हिम्मत और हौसला बढ़ाते रहेंगे। आपका साथ मेरे लिए सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि बेहद खास है। प्लीज मेरी बाकी कहानियां भी जरूर पढ़िए और बताइए कि क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। आपके हर एक कॉमेंट, हर एक शब्द से मुझे नई ऊर्जा मिलती है। वैसे अभी भी इस कहानी में कुछ ऐसे दिलचस्प और रहस्यमय किरदार बाकी हैं जो आने वाले एपिसोड्स को और भी मजेदार और ट्विस्ट से भरपूर बना सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं एक नई दुनिया में कदम रखने के लिए? बस मुझे चाहिए आपका प्यार, आपकी राय और आपका साथ। कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आप इस सफर में मेरे साथ हैं। आई प्रॉमिस आने वाले एपिसोड्स आपको हर बार चौंकाएंगे और कहानी में और गहराई लेकर आएंगे। दोस्तों, मुझे आपके वैल्यूएबल कमेंट्स का इंतजार रहेगा।